नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तलाश इंडिया क्राइम्स के चौथे एपिसोड में। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत प्रेम प्यार मुझे दिखा रहे हैं और मेरे इस छोटे से एक एफर्ट को पसंद कर रहे हैं। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके सामने बहुत ही दिलचस्प तरह की कहानियाँ लेकर आऊँ, वो जो बहुत ही अद्भुत हो। जैसे कि मेरे पिछले एपिसोड में दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की कहानी बताई थी, उससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको एक सीरियल किलर जिसने अंग्रेज़ों के समय में 931 खून करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब तक आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई और आज की कहानी एक महिला की है जिसे हो सकता है फांसी दे दी जाए और वो इंडिया की पहली महिला होंगी, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली महिला होंगी जिसे फांसी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की ये कहानी है। उत्तर प्रदेश जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्राइम्स भी बहुत होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है अमरोहा, ये कहानी अमरोहा शहर की है। अमरोहा शहर में एक इलाका है जिसका नाम है बावनखेड़ी। यहाँ एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में एक बेटी थी जिसका नाम था शबनम। ये अच्छा खासा अमीर परिवार था, पढ़े लिखे लोग थे इस परिवार में। शबनम के फादर स्कूल में टीचर थे और शबनम के साथ उसके दो भाई और माँ रहते थे। मतलब घर में शबनम, उसके फादर, मदर और दो भाई रहते थे। शबनम ने डबल एमए किया था और वो भी स्कूल में टीचर बनी और बच्चों को इंग्लिश सिखाया करती थी। शबनम अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, नेचर बहुत अच्छा था। गरीबों की कॉलेज की फ़ीस भी दे दिया करती थी और कॉलेज ख़त्म करने के बाद वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। अब बावनखेड़ी में ही शबनम को एक लड़के से प्यार हो जाता जिसका नाम था सलीम। दोनों शबनम और सलीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जहाँ शबनम का परिवार पढ़ा लिखा अमीर था, उसी तरफ सलीम ने सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई करी थी और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। शबनम के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि दोनों शादी करें। सलीम और शबनम दोनों समाज की परवाह ना करते हुए, घर वालों की परवाह ना करते हुए ये अपने प्यार की कहानी आगे बढ़ाते रहे। ये सोचते रहे कि वो घर वाले को मना लेंगे और दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माँ बाप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो ये रिश्ते से खुश नहीं है, पर यहाँ दोनों शबनम और सलीम मानने को तैयार नहीं थे। फिर 14 अप्रैल 2008 की एक रात आती है। इस बात को लगभग 12 साल हो गए हैं। इस रात को बावनखेड़ी और अमरोहा के लोग आज तक भूले नहीं हैं और यहाँ गाँव के लोग और यहाँ के आसपास के इलाके के लोगों ने इन 12 सालों में अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। 14 अप्रैल 2008 को एक पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करता है कि उसके सामने वाले घर में लाशें पड़ी हुई हैं। वहाँ का थाना हसनपुर थाना पड़ता है। पुलिस फटाफट उस घर पर पहुँचती है और पहुँचते ही पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस को वहाँ पर 7 लाशें मिलती हैं, शबनम के फादर की, शबनम की मदर की, शबनम के दोनों भाइयों की, एक भाभी की, एक मौसी की बेटी की और एक 7 साल का बच्चा जो शबनम का भतीजा था। सभी के ऊपर चोट के निशान, कुल्हाड़ी से उन्हें मारा गया था। और एक तरफ शबनम बैठकर पागलों की तरह रो रही है। जाहिर सी बात है कि सारे घर के लोग मर गए हैं, वो अकेली बची है, तो लोगों की हमदर्दी भी शबनम के साथ थी। पुलिस 7 लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शबनम की हालत पूछताछ के लायक तो नहीं थी, फिर भी इनिशियली पुलिस ने थोड़ी बहुत जो पूछताछ की तो शबनम ने बताया कि वो छत पे थी और छत के ज़रिए कुछ लोग आए, शायद चोर थे, जो छत के ज़रिए घर में घुसे और 7 लोगों को मार दिया। ये कत्ल की बात धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैलती है। लोगों में बहुत गुस्सा होता है और डर भी रहता है। वो पुलिस के अगेंस्ट धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये बात फिर लखनऊ तक पहुँच जाती। उस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती होती है, तो मायावती खुद उस गांव आती है, परिवार वालों से मिलती है और ऐलान करती है कि 5 लाख रुपए एज कॉम्पनसेशन शबनम को दिया जाए। इसके बाद मायावती वापस लखनऊ चली जाती हैं। वहां का जो SHO होता है थाने का, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर को वहाँ भेजा जाता है इस मामले की तहकीकात करने। पुलिस शबनम से ज़्यादा पूछताछ कर नहीं पाती क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं होती, क्योंकि परिवार के सारे लोग मर गए होते हैं। तो पुलिस अपने हिसाब से वो घर में तहकीकात करना शुरू करती है। इसी दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिससे पुलिस के सोचने का नज़रिया ही चेंज हो जाता है। रिपोर्ट ये आती है कि सातों के सात लोगों ने कोई भी तरह का विरोध नहीं किया, मतलब वो जो भी घाव थे उन पे उससे ये जाहिर नहीं हुआ कि उन्होंने रेजिस्ट किया हो किसी तरीके से। और दूसरी सबसे बड़ी बात पोस्टमार्टम में यह आती है कि उनको जहर दे के मारा गया। अब सोचने की बात है कि अगर कोई चोर आता है तो वो आएगा, चोरी करेगा या कत्ल करके चला जाएगा, जहर अपने साथ लेके नहीं आएगा। और जहर लेके भी आएगा तो वो उनको खिलाएगा थोड़ी, क्योंकि जहर तो धोखे से खिलाया जाता है किसी को भी। अब पुलिस को शक होता है और वो फिर से शबनम से पूछताछ करते हैं। शबनम ने कहा था कि वो लोग छत से आए थे और छत से नीचे जाके उनका कत्ल किया। और जो आसपास के पड़ोसी लोग थे वो जब आए, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि घर का मेन गेट बंद था और छत की ऊंचाई 14 फीट थी, और 14 फीट ऊंचे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगेगी, ना कोई सीढ़ी मिली ना कोई निशान मिले कि किसी ने चढ़ने की कोशिश की हो या चढ़ा हो वहाँ से। सिर्फ एक पतला सा पाइप था जिस पर अगर एक आदमी भी चढ़ता तो पाइप टूट के गिर जाता। और दूसरी बात, जो छत से घर में जाने का जो रास्ता था, जो सीढ़ियाँ थी, उसके बीच का दरवाज़ा भी बंद था। और जो 7 लाशें थी उनके ऊपर भी ऐसा कोई घाव नहीं मिला कि जिससे कि हाथापाई का कोई क्लू मिले। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि ये कत्ल धोखे से किया गया, घर में फोर्सफुल एंट्री नहीं हुई और मौत की वजह वो जहर है। और बाद में उनको सबको कुल्हाड़ी से मारा गया। वहाँ पर कप प्लेटें थे, चाय थी, जैसे कि चाय पी गई हो आखिर में। और पुलिस को ये शक हुआ कि घर के सातों लोग वो खाना खा के या चाय पी के मरे हैं जिसमें जहर है, और अकेली शबनम कैसे बच गई। पुलिस ने फिर शबनम पे ज़ीरो इन करना शुरू किया और सबसे पहले शबनम के कॉल रिकॉर्ड को चेक करवाया। और उस वारदात के दिन 14 अप्रैल 2008 के दिन शबनम ने 55 कॉल सलीम को किए थे। और जो लास्ट दो कॉल थे वो पहला कॉल कत्ल हो जाने के 5 मिनट पहले और दूसरा कत्ल हो जाने के 5 मिनट बाद का था। और पूरे महीने में करीब 900 कॉल सलीम को किए। अब पुलिस को ये शक होता है कि कत्ल हो जाने के 5 से 10 मिनट बाद वो सलीम से बात करती है पर पुलिस को फ़ोन नहीं करती, वो कॉल पड़ोसी करता है पर पड़ोसी को आवाज़ लगाती शबनम है, मतलब आवाज़ लगा के शबनम उनको बुलाती है और फिर पड़ोसी पुलिस वाले को कॉल करता है। अब दूसरी तरफ जो मायावती ने ऐलान किया था कि 5 लाख रुपए शबनम को देंगे, वो उस टाइम जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज थे वो सरकार से मना करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। तो उनसे जब सवाल किया गया कि ऐसा क्यों नहीं करें, अगर डिक्लेयर कर दिया है तो 5 लाख रुपए तो देने हैं, तो इन्होंने पुलिस अफसर जो इंचार्ज थे उन्होंने सरकार से 48 घंटे का टाइम मांगा। मायावती और उनका मंत्रालय ये बात मान जाता है और पुलिस को 48 घंटे का समय दे देती है। पुलिस अब सलीम को, जिसको 55 कॉल किए हुए थे उस दिन, जाके सलीम को उठाती है और अपने पुलिस के अंदाज से सलीम से पूछताछ करती है और सलीम सारी बातें उगल देता है। कहानी ये थी कि दोनों के रिश्ते से घर वाले नाखुश थे और उन्हें पता था कि ये शादी होगी नहीं। हाँ, एक और बात, अब मेन कहानी पे आऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ जो मैं भूल गया था। ये हादसे के बाद, मतलब ये कत्ल के बाद, शबनम की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी थी। तो पड़ोसियों ने, घर वालों ने मिल के उसका चेकअप कराया। रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है और उसकी गर्भ में अभी 7 महीने का एक बच्चा है और शबनम की शादी हुई नहीं होती है। तो अब कॉल डिटेल्स, ये रिपोर्ट, पड़ोसियों का बयान और सलीम को उठाने के बाद सलीम पूरी कहानी खुद ही बता देता है। अब सलीम बताता है कि दोनों ने मिलके ये कत्ल करने का डिसाइड किया। शबनम घर में होती है, सलीम बाहर से जहर लेके आता है, शबनम दरवाज़ा खोलती है, उनको रात का खाना देती है, रात के खाने के बाद चाय में जहर मिला के सबको पिलाती है, पर जो 7 साल का बच्चा है वो चाय पीता नहीं है तो उसका गला घोट के मारती है, उसके बाद कुल्हाड़ी से सब पे वार करती है, सब मर जाते हैं। तो दरवाज़ा खोलती है, सलीम को बाहर भेजती है, चीख के चिल्ला के पड़ोसी को बुलाती है और जो पड़ोसी फिर पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म करता है कि घर में लाश पड़ी है। इसके बाद पुलिस शबनम के पास आती है, सलीम और शबनम का आमना सामना करवाती है। अब शबनम को तब समझ में आ जाता है कि सलीम सब कुछ बोल चुका है, तो वो भी ये क्राइम को कन्फेस कर लेती है कि ये मर्डर, ये कत्ल, ये सातों कत्ल दोनों ने मिलके किए। अब सारे सबूत है तो ये केस कोर्ट पहुंचता है, लोअर कोर्ट दोनों को फांसी की सज़ा सुनाता है। फिर ये लोग हाई कोर्ट जाते हैं, इसके अगेंस्ट अपील करते हैं, और शबनम को जब जेल होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसका बच्चा जेल में ही होता है। और जेल का एक कानून है कि बच्चा अगर जेल में हुआ है तो वो माँ के साथ ही जेल में रहेगा, तो ये बच्चा शबनम के साथ 7 साल तक जेल में रहता है। और 7 साल के बाद बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है, कहीं भेज दिया जाता है, या कोई और है तो उसको ले जा सकता है। उधर हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है और वो इनका जो पिटीशन होता है कि फांसी माफ़ की जाए, उसको रद्द कर देती है और फांसी की सज़ा बरकरार रखती है। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी ये जो केस का जो नेचर था उसको देखते हुए वो भी फांसी की सज़ा को बरकरार रखती है, और सुप्रीम कोर्ट फिर इमीडिएटली डेथ वारंट निकाल देती है। डेथ वारंट निकाल देने का मतलब ये होता है कि ये कन्फर्म हो गया अब इनको फांसी होगी। डेथ वारंट नोटिस दोनों को अपनी अपनी जेल में जाता है, क्योंकि जो सलीम होता है वो आगरा की जेल में होता है और शबनम मुरादाबाद की जेल में होती है। अब ये डेथ वारंट जब दोनों जेलों में जेलर के पास पहुंचता है तो उसमें एक कमी रह जाती है डेथ वारंट में, कि उसमें टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ डेथ, मतलब इनको फांसी कब और कहाँ और किस समय दी जाए, वो क्लियर नहीं होता है, वो क्लियरली मेंशन नहीं होता है। इस बीच ये लोग दोनों यूपी के गवर्नर और इंडिया के प्रेसिडेंट के सामने अपील करते हैं, मर्सी के लिए अपील करते हैं कि इनकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए, और दोनों ही जगह से इनकी ये रिक्वेस्ट भी डिनाई हो जाती है, मना कर दी जाती है। तो फिर ये दोनों एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं, जिसका ग्राउंड ये होता है कि माँ कहती है कि मेरे मर जाने के बाद मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, तो उसको मेरी ज़रूरत है, तो ह्यूमन ग्राउंड पे इनकी फांसी की सज़ा उम्र कैद में चेंज कर दी जाए। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रिव्यू को भी डिनाई कर दिया है, और इन दोनों को फांसी होनी ही है, और अगर फांसी हो जाती है तो ये आज़ाद भारत की पहली महिला होंगी जिसे फांसी दी जाएगी। शबनम जब कॉलेज में थी, उसका एक दोस्त था जिसका नाम था सैफ़ी। सैफ़ी की शबनम ने मदद भी की थी, उसकी कॉलेज की फ़ीस भरी थी, और सैफ़ी शबनम को अपनी बहन की तरह मानता था। और उसका यह कहना है कि वो उसके आज तक ये समझ में नहीं आया कि शबनम ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था, वो किसी का कत्ल कर ही नहीं सकती थी। सैफ़ी की शादी हो चुकी है और उन दोनों ने, सैफ़ी और सैफ़ी की वाइफ ने डिसाइड किया कि जो शबनम है उसके बच्चे को ये अडॉप्ट करेंगे, उसकी परवरिश करेंगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि शबनम ने जो सैफ़ी की पढ़ाई वगैरह में मदद की है वो एहसान उतारना चाहता है। पहले शबनम अपने बच्चे को सैफ़ी को देने से मना कर रही थी, पर बाद में जब फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसका पिटीशन वगैरह सब खारिज हो गया, तो उसने सैफ़ी को बुलाया और अपने बच्चे को उसको देने को एग्री कर गई। बस शबनम ने एक दो शर्तें रखी थी कि उसका नाम बदल दे, दूसरा उसको कभी गांव ना लेके जाए। तो ये बच्चा सैफ़ी के पास है, सैफ़ी और सैफ़ी की वाइफ दोनों मिलकर इसकी अच्छी की परवरिश कर रहे हैं। उन्होंने इनको बताया नहीं कि इनकी माँ कौन है, और ना ही वो बताएंगे। तो ये है पूरी कहानी, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस हादसे के बाद वो पूरा गांव शबनम के नाम से डरता है, और आज 12 साल हो जाने के बाद भी लोग वहाँ पे अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखते। तो दोस्तों, ये था तलाश, इंडिया क्राइम्स का 4th एपिसोड। आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो। आपके फीडबैक्स और सजेशंस हमेशा की तरह वेलकम है। नमस्कार।